हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वो आदित्य का कॉलर और कसकर पकड़ते हुए बोली, लेकिन सुन लो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। कमरे में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। अब मामला सिर्फ एक रिश्ते का नहीं रहा था, ये अहम पावर और विश्वास की लड़ाई बन चुकी थी। और तुरंत ही झलक ने आदित्य का गिरेबान छोड़ दिया। वो सीधा दादाजी यानी बलवीर दादाजी की ओर मुड़ी और उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, आपका दोस्ती निभाने का तरीका वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे दादाजी भले ही आपको अपना बचपन का दोस्त मानते हों, भले ही आपको कितना ही सम्मान देते हों, लेकिन मेरा कभी भी आपके बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे मर्दों से नफरत है, पूरी की पूरी मर्द जात से नफरत है, मुझे नफरत है। इतना कहते ही झलक ने गुस्से से प्लेट पटक दी, पास रखा लैपटॉप उठाया और बिना पीछे देखे सीधे अपने कमरे में चली गई। वहीं बलवीर जी को ये सब इतना अपमानजनक लगा कि वो अपनी नज़रें तक उठाकर दिग्विजय सिंह जी को देख नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावे की गहरी लकीरें साफ नज़र आ रही थीं। दिग्विजय सिंह जी थोड़ा परेशान होकर तुरंत बलवीर के पास आए और उनकी ओर देखकर बोले, सॉरी यार, बच्चे की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तुझे ऐसा महसूस करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, आदित्य गुस्से से अपने दादाजी की ओर देखा, बिना कुछ बोले पलटा और वहां से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे कबीर भी तुरंत चला गया, क्योंकि झलक का ये व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। बलवीर राणा अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती हो गई यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था इस तरह से तेरी पोती का रिश्ता तय करने की बात। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से चले गए। वहीं सौरभ, स्नेहा और बाकी सब दिग्विजय जी को संभालने की कोशिश करने लगे। दिग्विजय जी खुद से ही बुदबुदाते हुए बोले, ये क्या कर दिया बालवीर ने, ये क्या कर दिया उसने। दूसरी ओर आदित्य ने घर पहुंचते ही पूरा घर सिर पर उठा लिया। झलक ने बिना एक थप्पड़ मारे ही जिस तरह से सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, वो उसके लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था, गुस्से में घर में तोड़फोड़ मचा रहा था। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका गुस्सा किसी भी हाल में काबू में नहीं आ रहा था। हालांकि कहीं न कहीं झलक के लिए उसके दिल में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका था, लेकिन आज झलक का ये व्यवहार देखकर उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ये सब दादाजी के सामने किया था। दादाजी जल्दी से आदित्य के पास आए और उसे शांत करते हुए बोले, बेटा शांत हो जा। लेकिन आदित्य गुस्से में दादाजी की ओर देखकर चिल्ला पड़ा, आपने ये क्या किया दादाजी? मैंने तो बस उस लड़की का नाम आपके सामने लिया था, आप तो रिश्ता लेकर वहां पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत बड़ी गलती कर दी दादाजी, बहुत बड़ी गलती। ये कहते हुए आदित्य गुस्से से वहां से चला गया। दादाजी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। पहली बार उनके लाडले पोते ने उनसे इस तरह बात की थी। ये बात उनके दिल को चीर कर रख गई थी। उन्हें बेहद बुरा लग रहा था, दर्द असहनीय हो चुका था। उधर कबीर भी पूरी तरह से परेशान था। आज तक कितनी ही लड़कियों ने आदित्य को पाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी आदित्य राणा ने किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसकी जिंदगी में आना किसी भी लड़की का सपना होता था, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो चुका था। आदित्य के दिमाग से झलक का चेहरा, उसका गिरेबान पकड़ना, सबके सामने उसकी बेइज्जती करना, ये सब निकल ही नहीं रहा था। उसे बेहद अजीब और भारी महसूस हो रहा था। उस वक्त उसके माता पिता घर पर नहीं थे, वे दोनों किसी ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ दादाजी ही थे। तभी अचानक आदित्य के कानों में कबीर की घबराई हुई आवाज़ गूंजी, आदित्य जल्दी आओ। आदित्य फौरन नीचे की ओर दौड़ा। उसने देखा कि दादाजी निढाल होकर सोफे पर पड़े थे। कबीर उन्हें उठाने और होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादाजी बिल्कुल बेहोश थे, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। कबीर पूरी तरह से घबरा चुका था। आदित्य की हालत भी खराब हो गई। जल्दी ही दादाजी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहां डॉक्टर ने साफ साफ बताया, उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही आदित्य पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके मन में इस सब का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ झलक को मान रहा था। वहीं दादाजी के कमरे में अनामिका, स्नेहा और सौरभ इनो मौजूद थे। रोहन छोटा था, इसलिए दादाजी ने स्नेहा जी और सौरभ जी से कहा कि रोहन को लेकर बाहर आराम करने ले जाएं। अनामिका गहरी चिंता में डूबी हुई बोली, ये सब क्या हो गया दादाजी? क्या आपने बलवीर अंकल को झलक के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी कि हमें किस तरीके से इन दोनों को करीब लेकर आना है? उन्हें इस तरह सीधे शादी के बंधन में नहीं बांधना चाहिए था। तभी वे थोड़ा घबराते हुए बोले थे,
आपने झलक का चेहरा देखा था दादाजी? ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी हद तक गुस्से से भर गई हो और उसे इस बात का कितना ज्यादा बुरा लगा हो। अब दादाजी थोड़ा दबाव में आकर बोले थे, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है। मुझे साफ साफ तरीके से बलवीर को सब कुछ बता देना चाहिए था। जब मुझे बलवीर का मैसेज आया, तुम सोच भी सकते हो मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था। मुझे लगा था कि झलक के लिए हमें एक ऐसा परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जो उसके दिल का बोझ कम करेगा, क्योंकि हमारी झलक तो एकदम पत्थर दिल बन चुकी है और अगर उसकी जिंदगी में एक बार फिर से प्यार लाना है तो आदित्य जैसे लड़के की ही जरूरत पड़ेगी। हमने आदित्य के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ली थी। वो फौरन से काबिल होकर लौटा है और सबसे बड़ी बात, वो हमारा देखा परखा लड़का है। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि जल्दबाजी में सब कुछ इतना बड़ा रूप ले लेगा। कहीं ना कहीं दादाजी को भी काफी बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें ठंडे दिमाग से बलवीर से बात करनी चाहिए थी, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बलवीर की तो और भी ज्यादा जल्दबाजी निकली। वो तो कब से अपने पोते के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। कितनी सारी लड़कियां उन्होंने पसंद की थी, लेकिन आज तक आदित्य ने किसी को भी पसंद नहीं किया। जैसे ही झलक का नाम उसने सुना, वो पूरी तरह से बेचैन हो उठा और बिना देर किए झलक को अपनी जिंदगी में लाने का फैसला कर लिया। दिग्विजय सिंह जी की बात को ठीक से समझे बिना ही वो रिश्ता लेकर वहां पहुंच गए और अब उसी जल्दबाजी की वजह से सबको दर्द और पीड़ा महसूस हो रही थी। अब आदित्य लाल आंखों के साथ वहीं बैठा हुआ था। झलक की बातें उसके दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मेरी जिंदगी में मर्दों की कोई जगह नहीं है, ये शब्द उसके अंदर बार बार गूंज रहे थे। वो गुस्से से फोन पटकते हुए सोच रहा था, आखिर है कौन ये लड़की और इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। अगर ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ है तो क्या इंसानों को इंसान समझना छोड़ देगी। कहीं ना कहीं आदित्य का अहम पूरी तरह भड़क उठा था। रात के 3:30 बज रहे थे। गुस्से में वो सीधा मल्होत्रा मेंशन की ओर निकल पड़ा। सिक्योरिटी को किसी बहाने से दूसरी दिशा में भेजकर वो बालकनी के रास्ते झलक के कमरे तक पहुंच गया। उस वक्त सिक्योरिटी थोड़ी कम थी, इसलिए उसके लिए अंदर घुसना आसान हो गया। झलक काफी देर तक काम करने के बाद सुकून से सो रही थी। दिन भर की घटनाओं के बारे में उसने सोचना भी जरूरी नहीं समझा था, लेकिन जैसे ही आदित्य कमरे में आया और उसने झलक को इतनी शांति से सोते हुए देखा, उसके अंदर की आग और भड़क उठी। वो तेजी से आगे बढ़ा और झलक का कंधा झकझोर दिया।
झलक भले ही गहरी नींद में थी, लेकिन उसका रिएक्शन बिजली की तरह तेज था। उसने तुरंत आदित्य का हाथ झटका और उसे नीचे की ओर धक्का दे दिया। आदित्य इसके ये तैयार था, लेकिन झलक तुरंत उठ खड़ी हुई और साइड टेबल के नीचे रखी पिस्तौल निकालकर सीधा उसकी ओर तान दी। फिर उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही उसकी नज़र बिखरे बालों और गुस्से से भरे चेहरे के साथ खड़े आदित्य पर पड़ी, उसके माथे पर बल पड़ गए। वहीं आदित्य पूरी तरह हैरान था, इतनी गहरी नींद में होने के बावजूद झलक ने कितनी तेजी और सटीकता से प्रतिक्रिया दी थी। हालात कुछ और होते तो शायद वो उसकी इस सतर्कता की तारीफ करता, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। झलक ने बंदूक थोड़ी नीचे की, लेकिन नज़रें उसी पर गड़ाए रखते हुए बोली, मिस्टर राणा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन झेल नहीं पाए इसलिए बदला लेने आए हैं? आप क्या मुझे कोई कमज़ोर लड़की समझते हैं जिसे आप यहाँ आकर अगवा कर लेंगे और जो मर्जी करेंगे? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। ये सुनकर आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, झलक का हाथ पकड़ा और एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। वो उसे अपने करीब ले आया, लेकिन उसकी पकड़ में क्रोध ज्यादा था, वासना नहीं। दांत भींचते हुए उसने कहा, आखिर तुम्हें अपने बारे में इतनी गलतफहमी क्यों है मिस मल्होत्रा? तुम जानती हो मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आया था, क्योंकि आज तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें मेरे दादा के सामने उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ मुझसे नहीं, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दर्द साफ था। तुम्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि मेरे दादा पर उसका क्या असर पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दादा को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में एडमिट है। झलक की आंखों में एक पल के लिए सन्नाटा उतर आया। आदित्य ने आखिरी बार उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखना झलक मल्होत्रा, अगर मेरे दादा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना कहकर उसने झलक को झटके से छोड़ दिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। झलक वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से बंदूक धीरे धीरे नीचे झुक गई। आदित्य के शब्दों में अपने दादा के लिए जो मोहब्बत और डर था वो साफ झलक रहा था और पहली बार उसके दिल में भी हल्की सी बेचैनी उतर आई।